ओम शांति। राजयोग शिविर का आज अंतिम सत्र और बहुत ही सुंदर टॉपिक एक्सप्लोरिंग 8 पावर्स। आप सभी यहाँ राजयोग शिविर या फिर स्पोर्ट्स विंग का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं और आज शायद कुछ वापिस भी चले जाए, कहीं का 9th का रिटर्न है तो कहीं का 10th का रिटर्न है, लेकिन वापिस जाकर शायद राजयोग की इस विधि को इतना आप अपनी बिजी लाइफ में शामिल ना भी कर पाए। लेकिन जब व्यक्ति को किसी भी विधि से प्राप्ति का एहसास होता है तो हम और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं उस विधि को बनाए रखने के लिए। तो आप 4 दिन यहाँ पर बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए, राजयोग शिविर किया, लेकिन प्राप्ति क्या होती है इससे? तो सबसे पहले जब आपने ज्ञान सरोवर में एंटर किया तो सबसे पहले आपको क्या मिली? शांति। और धीरे धीरे आपकी खुशी बढ़ती गई। मैंने आप में से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन को ये कहते हुए सुना कि हमने इतना सुंदर हिल स्टेशन आज तक नहीं देखा। सभी ने कहा है ना? क्योंकि शायद मैं ऐसा समझती हूँ श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, इससे सुंदर ब्यूटी वहां जरूर आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन वो जो आभास है प्योरिटी और पावर और पीस का, वो इसी कॉम्प्लेक्स में, इसी माउंट आबू में, इसी एकेडमी में आपको अनुभव होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब आत्मा इस परिवेश में अपने को बनाए रखती है तो उसको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आज हम जानते हैं राजयोग से क्या प्राप्ति होती है, वो कौन सी अष्ट शक्तियां हैं जो राजयोग के अभ्यास से हम अपने पारिवारिक जीवन, हम अपने सामाजिक जीवन और हम अपने विशेष व्यवहारिक जीवन में ला सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे इन शक्तियों में कि ये शक्तियां तो हर फील्ड में, हर जगह जीवन का एक अहम पहलू है और इस अहम पहलू को अनुभव करने के लिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि राजयोग हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि प्राप्तियां समझ में आ गई तो इस विधि को आप घर जाकर कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप अपने जीवन में इसको बनाए रखेंगे ना? जैसे अभी हम एंटर कर रहे थे तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछती हूँ, आज शरीर ज्यादा बीमार है कि मन ज्यादा बीमार है? मन ज्यादा बीमार है। आज 80% से ज्यादा डॉक्टर्स का कहना है कि आज बीमारियां साइकिक हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। बीमारियों का कारण कोई शरीर में कोई दर्द या कोई और प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है, लेकिन मन बहुत भारी है, मन चिड़चिड़ा हो गया है, मन कमजोर हो गया है, मन स्ट्रेस फील करता है, मन भारी हो गया है। इस भारी मन को राजयोग की विधि से हम सबको हल्का करना है। तो इन 8 पावर्स में जो सबसे पहली शक्ति है वो कौन सी है हम देखते हैं। पहले तो इम्पोर्टेंस और स्पिरिचुअल पावर्स इन लाइफ, सबको मालूम है कि शक्तियों का जीवन में तो बहुत बहुत अहम स्थान है। चाहे हम सामना करने की शक्ति का अनुभव करें, चाहे हम सहन करने की शक्ति का अनुभव करें और चाहे हम निर्णय करने की शक्ति का, सारी शक्तियां आज जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर है स्पिरिचुअल पावर्स, और वो 8 स्पिरिचुअल पावर्स कौन सी हैं हम उसको इस चक्र में देख रहे हैं। 8 स्पिरिचुअल पावर्स। तो अगर हम इसको सही तरीके से इन स्पिरिचुअल पावर्स को काउंट करें तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे पावर टू टॉलरेट। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। और नंबर से फिर हम आगे 8 पावर्स को अनुभव करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर टू टॉलरेट के विषय में। सहन करने की शक्ति। सहन शक्ति में आपको सामने एक पेड़ नजर आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं? पेड़ पर पत्थर मारते हैं, पर वो क्या गिराता है? फल ही गिराता है। तो प्रकृति से भी हम इन शक्तियों को ले सकते हैं। हमने पत्थर मारा और पेड़ ने फिर भी आम ही या कोई और फल ही गिराया, तो उसने सहन किया ना, पेड़ ने भी सहन किया। तो प्रकृति भी सहन करती है और हमें एक मैसेज देती है कि हमें अपने जीवन में सहन करना कितना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एक ऑफिस में दो लोगों को बॉस ने बहुत बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना दिया ऑफिस में बुलाकर, जबकि गलती दोनों की ही नहीं थी, शायद किसी तीसरे की गलती थी। और उन दोनों को इतना ज्यादा सुनाया कि पहले वाले ने कहा कि जब मेरी गलती नहीं थी और मुझे इतना ज्यादा सुनाया तो मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई, अब मैं इस ऑफिस में नहीं रह सकता और मुझे अब रेजिग्नेशन के साथ ही इस ऑफिस में एंटर करना है। वो चले गए और अगले दिन रेजिग्नेशन लेकर ऑफिस में एंटर हुए और वापस उस ऑफिस में कभी नहीं आए। दूसरे ने कहा, इनका रोज का काम है, एक कप चाय पीते हैं और अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं। एक कप चाय से उन्होंने अपने उस मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम किया और फिर से उस ऑफिस में अपने उस डेस्क पर आकर काम करना शुरू किया। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, जब उस व्यक्ति ने बीच में रेजिग्नेशन दे दिया तो उस व्यक्ति का अपने घर में बने रहना, जो कि उनके बच्चों की एजुकेशन पर फर्क पड़ा, उनकी मेंटल स्थिति पर फर्क पड़ा, उनके घर में बने रहने से उनके संबंधों में इतनी मधुरता नहीं रही, आए दिन लड़ाई झगड़े। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं और बहुत टाइम साथ होते हैं तो क्या होता है। तो अगर ऐसी स्थिति उन्होंने एक रेजिग्नेशन से अपने घर और परिवार की, अपनी मन की स्थिति बना ली, तो कौन राइट था? फर्स्ट वन और सेकंड? सेकंड। क्यों राइट था? दोनों की गलती नहीं थी, एक ने रेजिग्नेशन दे दिया, दूसरे ने एक कप चाय के साथ वहां पर रहना उचित समझा। सॉरी टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस पावर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो जीवन में हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस तो करते हैं लेकिन हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर्डल्स तो जीवन में आते हैं, हर एस्पेक्ट में आप देखना, कोई ना कोई हर्डल आपके सामने खड़ा होता है, बैरियर खड़ा होता है। चाहे शायद किसी व्यक्ति ने वो बैरियर क्रिएट क्यों नहीं किया मेरे लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सहन करते हैं, थोड़ा सा सहन करते हैं, तो क्या आप जीवन में उस व्यक्ति को क्रॉस नहीं कर सकते, उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, उस चैलेंज को, उस स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर सकते? लेकिन शायद आज हम सबका मन इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि आज हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अरे हम पड़ोसी का टॉलरेट, बॉस का टॉलरेट तो छोड़ दो, हम अपनों का टॉलरेट भी नहीं करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सहन शक्ति तो बहुत बहुत हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है, लेकिन ये सहन शक्ति भी मन को कंट्रोल करने से ही आती है। तो इसके लिए भी हमें राजयोग की विधि का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। तो पहली यस देखिए, अगर एवरीडे उनका एक संस्कार है शाउट करने का, तो इसका मतलब तो ये समझ में आ चुका है आपको कि उनका ये हैबिट है, वो यूज टू हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। बुरा किसका लगता है जो हमेशा शांत रहते हैं, आज पता नहीं मुझे अचानक डांट दिया, आज पता नहीं अचानक मुझे सुना दिया गया, राइट? बुरा उसका लगता है, बुरा उनका नहीं लगता जो एवरीडे शाउट करता है। इट मींस कि वो उनके संस्कार में है, डीप रूटेड है। अब जिनका संस्कार ही शाउट करने का है, उनका मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? एम आई राइट और रॉन्ग? तो उनको तो आपको सहन करने की पावर इजीली आ जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना? तो प्लीज इस तरीके से हम उसको जज, उनको जज ना करें कि इनका तो रोज का ही है। रोज का है इट मींस यूज टू है। मैं क्यों बुरा मानूं? मैं क्यों अपनी मेंटल स्टेट से नीचे आ जाऊं? मैं क्यों अपनी शांति और खुशी को गवाऊं? क्योंकि इनका तो संस्कार ही ऐसा है, ठीक है? तो पहली शक्ति है पावर टू टॉलरेट, इट मींस सहन करने की शक्ति। पावर टू एडजस्ट, यानी जब भी हम देखते हैं कहीं हम एडजस्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दिल्ली से, गुजरात से या ऐसी जगह से आए हैं जहां गर्मी पड़ती है। अब यहाँ का मौसम तो बहुत खुशगवार है, बहुत ठंडी है, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फीवर आ जाएगा, कोल्ड आ जाएगा। और शायद यहाँ पर जब हम एडजस्ट नहीं करते तो हम ज्यादा टाइम यहाँ पर बने भी रह नहीं सकते। तो एडजस्ट करने की शक्ति हमारे में हर जगह होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी वातावरण है, अगर एडजस्ट करने की शक्ति है तो हम कहीं भी बने रह सकते हैं। और अगर एडजस्ट करने की शक्ति नहीं है तो हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? अपने मन को स्ट्रेस में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे जो रूम्स हैं, रूम्स कईयों का टू बेडिंग रूम है, कईयों का थ्री बेडिंग रूम है, और कईयों का सेवन बेडिंग रूम भी है, सेवन बेडिंग रूम। तो अगर आपको वो रूम कहीं दे दिया गया तो आप एडजस्ट कर सकेंगे? कर सकेंगे? नहीं कर सकते। कौन कौन कर सकते हैं बताइए? अच्छा, सेवन वाले ही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो हाँ बहुत खुश है, कितना अच्छा लग रहा है ना कि देख या, क्योंकि यहाँ का वातावरण और जिस जगह पर आप बैठे हैं ये परमात्मा का दिया हुआ स्थान है। परमात्मा के दिए हुए स्थान में आप जहाँ पर जितना एडजस्ट करेंगे वो परमात्मा भी देख रहा है कि आपके अंदर एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता है। और अगर एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है तो कहीं पर भी हमारा संबंध जो है, हमारा आपसी व्यवहार है, कैसा हो जाता है? बहुत कड़वा हो जाता है। कि मैं हर किसी के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, कर सकती हूं, पर मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। आज आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा दरार का कारण ही है कि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम हरिनगर दिल्ली से आए हैं और हमारे सेंटर के, ब्रह्म कुमारी सेंटर के बिल्कुल सामने ही है तिहाड़ जेल, एशियाज नंबर वन तिहाड़ जेल। और उस तिहाड़ जेल में कम से कम भी तो 30,000 कैदी बंद हैं, 30,000। और वो जेल एक नहीं है, 1 to 9, 9 जेल्स एक ही दीवार के साथ बनी हुई हैं। हम पिछले 8 साल से वहां रेगुलर जाते हैं जेल में, और जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनको राजयोगा का अभ्यास कराते हैं। और आप यकीन मानिए, राजयोगा के अभ्यास से उनके जो व्यवहारिक जीवन में, उनमें इतना परिवर्तन आता है कि जो जेल के डायरेक्टर जनरल्स हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से जो बेल, जो 14 डेज वो बाहर जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी वो बेल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहारिक जीवन देखकर वो ये कहते हैं कि दीदी आप मेडिटेशन कराइए, आप उनकी काउंसलिंग कीजिए, आप उनको व्यवहारिक जीवन में बताइए कि जीवन जीने की कला होती क्या है, ताकि उनके पर्सनल लाइफ में परिवर्तन आए। नहीं तो तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी अपने को बनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स वहां से सीख कर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स बैरक्स वहां पर होते हैं और वो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, कहीं 100 रहते हैं, कहीं 150 रहते हैं, कहीं 200 रहते हैं कैदी, तो वो एक दूसरे से उस कला को सीखते हैं जिससे वो पकड़े ना जाए। लेकिन जो हमारे राजयोगा के अभ्यासी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वहां पर, वो उस अभ्यास को छोड़कर ऐसा अभ्यास अपना मन का करते हैं कि उनके अनुभव अगर मैं आपको कराने सुनाने लगूं तो पूरी एक क्लास अनुभव की ही रहे। वो कहते हैं दीदी 17 साल की जेल राजयोगा के अभ्यास से हमें 17 दिन की नजर आती है, इतनी जल्दी टाइम पास हो जाता है, हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं ज्यादा। क्यों स्ट्रेस नहीं लेते हैं? क्योंकि पहले वो सोचते थे कि इस चार दीवारी से हम बाहर कब निकलेंगे, और अब सोचते हैं कि ये जो जीवन जीने की कला जो हमें यहाँ सिखाई जा रही है, ये हम अपने सभी जो यहाँ पर हैं उनको जीवन जीने की कला सिखा कर जाएं, तो अपना बहुत ही पीसफुल मन माइंड से वो अपने जीवन को वहां पर आगे बढ़ाते हैं। और आप इससे भी ज्यादा, कई बार हमें वो माउंट आबू में देखने को मिलते हैं, और जब वो कहते हैं दीदी आप जेल में आए थे ना, आपने हमें ज्ञान सुनाया था, तो मैं बहुत खुशी होती है कि देखो वो पूरी तरीके से अब बरी हो चुके हैं और माउंट आबू जैसे इतने पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थल पर अपने सुंदर अनुभवों के साथ आए हैं। तो एडजस्ट करना हमें हर जगह जरूर आना चाहिए, कैसा भी वातावरण हो, कैसे भी साथी हो, चाहे वो आप बिजनेस में हैं, चाहे वो आप जॉब करते हैं, चाहे वो आप घर में हैं, हर जगह हमें हर किसी के साथ पूरी तरह एडजस्ट करना आना चाहिए। थर्ड पावर है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। परखिए कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया है, परखिए ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों घटित होती है, परखिए इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में ही क्यों आ रही है, इसको हमें परखना है। जैसे कोई ज्वेलर्स या कोई हीरे का व्यापारी हीरे को परखता है कि नकली हीरा कौन सा है और असली हीरा कौन सा है, ऐसी हमें अपने जीवन में परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखते हैं जीवन में हमने किसी व्यक्ति को अगर नहीं परखा और आप उसके चंगुल में आ जाते हैं तो आपका जीवन कैसे बिखर जाता है, राइट और रॉन्ग। और अगर हम किसी व्यक्ति को और समस्या को समय रहते नहीं परखते तो भी हमारा जीवन जो है गलत ट्रैक पर चला जाता है। आजकल आप देखते हैं कुछ ऐसे कॉल्स हमारे पास आते हैं जो फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड कॉल्स में अगर आपने अपने मेंटल स्थिति को स्टेबल रखकर उनकी बात नहीं सुनी और परखा नहीं कि ये क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सारे बैंक अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं, राइट और रॉन्ग। मैंने एक YouTube वीडियो YouTube पर डाली हुई है और मैं उसी वीडियो को 2 मिनट में बताना चाहूंगी। हमारे पास कुछ महीने पहले एक कॉल आता है कि हम दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया के पास ही रहते हैं, हरिनगर सेंटर है हमारा दिल्ली में, तो मुझे फौज का मैक्सिमम नॉलेज है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मुझे नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी हम आर्मी से बोल रहे हैं और दिल्ली कैंट से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं कर्नल सतीश कुमार बोल रहा हूं और मुझे आपका 7 डेज कोर्स कराना है अपनी यूनिट के लिए। तो मैंने कहा कहाँ पर है आपकी यूनिट? उन्होंने कहा दिल्ली कैंट में है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इमीडिएटली उन्होंने चेंज किया और कहा कि हम बीएसएफ से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जहां तक मुझे मालूम है दिल्ली कैंट में कोई भी बीएसएफ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी, आपको मालूम नहीं है, रात को ही हमारी पूरी बीएसएफ की यूनिट रात को 12 बजे दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में शिफ्ट हुई है, कुछ इमरजेंसी है, लेकिन हमें आपका राज्यों का अभ्यास पूरी यूनिट 45 लोगों के लिए कराना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं तो आपके कैंट एरिया के पास से ही बोल रही हूँ, लेकिन अभी मैं गाड़ी में हूँ और मैं आपके बीएसएफ हेडक्वार्टर से ही रास्ते में हूँ, मैं उनसे मिलकर आई हूँ। तो उन्होंने फोन रख दिया। जैसे जैसे मैं 15 मिनट बाद सेंटर पहुंची तो उनका फिर से फोन आया। तो उन्होंने कहा मैडम आप अपनी दो सिस्टर के पास मीन्स आधार कार्ड हमें भेज दीजिए। मैंने कहा क्यों रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड की? तो उन्होंने कहा कि दीदी आप यूनिट में ना विदाउट आधार कार्ड विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन आप एंटर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ब्रदर मैं बीएसएफ हेडक्वार्टर से आ रही हूँ, हेडक्वार्टर में ही कोई अगर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो आपके छोटे से यूनिट में आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं, इमरजेंसी कुछ रीजंस है और आपको आधार कार्ड देना होगा। मैंने कहा ठीक है, हमने अभी तक प्रोग्राम भी डिसाइड नहीं किया कि 7 डेज कोर्स कब से शुरू करना है, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आधे घंटे बाद फिर उनका फोन आया कि मैडम हमारे सीओ आपसे फोन पर बात करेंगे। तो मैंने कहा ब्रदर अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि आपका प्रोग्राम कब से करना है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हैं क्योंकि हमारा सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला था तो मैं उसमें बिजी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक बार आप सीओ से बात करिए। तो कुछ बात उन्होंने कराई और उन्होंने कहा कि आप अपना पेटीएम नंबर शेयर करिए। तो मैंने कहा ब्रदर सतीश जी जब आपको इतना सब कुछ पता है कि 7 डेज कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी इसका, आपको मालूम है कि नियरेस्ट सेंटर्स की ही सिस्टर्स आती हैं कराने के लिए, तो आपको ये तो मालूम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हम कुछ लेते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमें मालूम है दीदी आप कुछ लेते नहीं है, पर हम वॉलेंटियर कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, इन एडवांस देना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा इन एडवांस कुछ देना चाहते हैं, मैंने कॉल रखा और फिर मैंने पता किया कि ये कर्नल सतीश कुमार जो कि आर्मी में होते हैं और उन्होंने मुझे कहा बीएसएफ में है। तो मैंने पता किया तो पता पड़ा कि ये टोटली फ्रॉड कॉल था। और लकीली क्योंकि मुझे मालूम था इस तरीके से होता है, मैंने अपना नंबर अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर या आधार कार्ड उनको शेयर नहीं किया। तो क्या उस समय परखने की शक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है? आज आप देखिए आप सभी अपने अकाउंट्स में जो फ्रॉड हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं जब कोई कॉल आता है, कुछ उसने कोई एक ऐसी इमरजेंसी बता दी आपको फोन पर, आप एकदम पैनिक हो गए और आपने कहा कि ये मेरा एटीएम है, ये मेरा आधार कार्ड है। कई बार फोन पर ये भी बोलते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, हम बैंक से बोल रहे हैं, राइट, रिलेटिव बहुत ज्यादा सीरियस है। तो आप उस समय अपनी मन की शक्ति को बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल रखकर उसको परखिए व्यक्ति को, वो आपसे क्या चाहता है। और जब आप परखेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन से ऑटोमेटिक बाहर आ चुके होते हैं, फिर अदरवाइज बहुत ज्यादा वो महीनों तक वो टेंशन वो स्ट्रेस बना रहता है और व्यक्ति कौन था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं पड़ता। तो ये YouTube पर मैंने वीडियो डाली हुई है और इससे कई लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है कि हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। और लिटरली वो फौज से बोलते हैं, हमें जो फोन आते हैं वो तो फौज के लिए, आर्मी में प्रोग्राम करिए, बीएसएफ में प्रोग्राम करिए, सीएसएफ में प्रोग्राम करिए, एनीवे। तो हमें कौन सी शक्ति चाहिए उस समय? परखने की शक्ति। फोर्थ पावर इज पावर टू जज, जजमेंट। जजमेंट हम एक जिस मतलब एकदम से ना दें, कोई भी निर्णय हम एकदम से ना दें, जब हम निर्णय एकदम से दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाद में पछताते हैं अपने ही निर्णय से कि ओ माय गॉड, उस समय मैंने ऐसा क्यों कह दिया। तो कौन सी शक्ति चाहिए? निर्णय करने की शक्ति। और ये शक्ति हमेशा पावर टू, जो आपने डिस्क्रिमिनेट अभी पढ़ा, परखने की शक्ति के बाद ही करनी है निर्णय शक्ति। पहले निर्णय कर लिया और बाद में मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या ठीक था और क्या गलत था, तो पछतावा तो हमें ही होगा ना। तो पहले आप परखिए और उसके बाद निर्णय करिए। जैसे मैंने पहले परखा कि वो हमसे चाहता है कि हम उसको पेटीएम नंबर शेयर करें, हम उसे आधार कार्ड शेयर करें, और उसके बाद मैंने उनका कोई कॉल नहीं उठाया, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ही इज टोटली अ फ्रॉड। तो जब हम अपने डिसीजन को अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परखना है। क्या मेरा ये डिसीजन जो मैं दे रही हूं ये राइट है या रॉन्ग है? क्या ये मैं जिस डिसीजन पर पहुंची हूं ये लॉन्ग टाइम तक मैं ठीक हूं इस डिसीजन पर? कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हम बहुत बहुत ज्यादा अपनी दिशा से भटक जाते हैं। मैं तिहाड़ जेल के कैदी का अनुभव सुनाना चाहूंगी। एक बहुत ही यंग, मैं ऐसे समझती हूं शायद 24 या 26 साल के रहे होंगे, अब तो वो तिहाड़ जेल में नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले की बात है। हम जब भी तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच जाते हैं तो हम उनसे कभी भी नहीं पूछते किस रीजन की वजह से तिहाड़ में आना हुआ। मैं कभी भी पर्सनली उनसे नहीं पूछती हूं क्योंकि बहुत सारे रीजन है उनको पास्ट में ले जाने के, कि वो याद करते हैं, दुखी होते हैं कि हम कैसे यहां पर आ गए, हम कैसे इस चार दीवारी में इतने साल की कैद में आ गए, तो बहुत दुखी होते हैं। हम तो उस दुख और पीड़ा से उन्हें निकालने गए हैं तो हम रीजन क्यों पूछें? लेकिन कई बार कुछ खुद ही शेयर करते हैं हमसे। तो उस व्यक्ति ने शेयर किया कि दीदी, गांव में हमारी बहुत खेत और जमीन थी, तो मेरा और मेरे भाई का उन जमीन की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। ऑन द स्पॉट जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैंने, छोटे भाई ने जो कि कैद में था, उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने बड़े भाई को मार दिया। उनके पिताजी साथ ही खड़े थे, पुलिस आई, बड़े भाई तो चले गए, छोटे भाई को जो है कैद हो गई, और बूढ़ा पिता अपने उस बच्चे को कि अब भी छूटेगा, अब भी छूटेगा, उसकी याद में उसने भी शरीर छोड़ दिया। ये न्यूज छोटे भाई को तिहाड़ जेल में मिली। जब तिहाड़ जेल में उसको ये न्यूज मिली तो उसने हमें सुनाया कि दीदी, इस ज्ञान से आज मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि मेरी ही ग्रीड, मतलब मेरा लालच उस जमीन, उस प्रॉपर्टी के लिए, उस लालच ने ही आज मुझे तिहाड़ में पहुंचा दिया। मेरे बड़े भाई से मुझे जुड़ा कर दिया और अपने बड़े भाई का मैं गुनहगार हूं। और तीसरा, हम दोनों की याद में मेरे पिता ने शरीर त्याग दिया। तो मेरा ये लालच, ये धन तो मेरे भी काम नहीं आया क्योंकि वो 17 साल की कैद में तिहाड़ में बंद थे। 17 साल, जिसको कहते हैं लाइफर्स जेल। तिहाड़ जेल का जेल नंबर 2 वीआईपी जेल है और उस वीआईपी जेल में लाइफर्स बंद होते हैं, मतलब छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं, लाइफर्स, जिसको 17-18 साल की कैद होती है। तो आप देखिए दीदी कि इसने तो ना मुझे, इस धन ने तो ना मुझे सुख दिया, ना मेरे परिवार को सुख दिया। तो मैं जाकर एक ऐसी बात, ऐसी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं जो समाज को, घर परिवार में सुख आए। तो आप देखिए कि कैसे जब हम अपने निर्णय को आगे पीछे देखकर नहीं करते तो हमारा निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा को कहां से कहां ले जाता है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि उस समय मेरा निर्णय करना कितना कितना गलत था। काश मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता, काश मैं एक सेकंड तो सोचता मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन नहीं, हमारा जीवन कितना भटक जाता है हमारे एक गलत निर्णय से। फिफ्थ पावर है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। और ये शक्ति का अनुभव, और मैं कहूंगी कि टीवी चैनल्स पर जब जरूर आपने सुना होगा, अभी जो एक एक्टर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने शरीर छोड़ा था है ना, और उनकी माताजी हमारे मुंबई बोरीवली सेंटर से कनेक्टेड थी, घाटकोपर मुंबई है ना, वहां से वो कनेक्टेड थी। और इतनी कनेक्टेड थी कि वो सिद्धार्थ को अक्सर माउंट आबू लेकर आती थी, दादियों से मिलवाने, बड़े सीनियर से मिलवाने, मेडिटेशन का अभ्यास कराने। जब उनका शरीर छूटा तो उनकी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे का पूरा संस्कार ब्रह्मा कुमारी के रीति रिवाज अनुसार होगा। आई थी न्यूज देखी थी, पूरा मेडिटेशन से सारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स जो सेंटर्स पर रहती हैं हमारी तरह, उन्होंने बहुत सुंदर शांति पाठ उस आत्मा के लिए किया। एक टीवी रिपोर्टर ने जब उनकी मां से पूछा, आप रोई नहीं, आपका बेटा चला गया और आप रोई नहीं, तो उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा तो कब का चला गया था, तो ये तो बॉडी थी, इस शरीर के लिए क्या रोना है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले ज्ञान दिया जाता है आत्मा का। और यकीन मानिए वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की मां के लिए नहीं था, ये हम सभी आत्माओं के लिए है कि जब हमारे किसी निकट संबंधी पर ऐसी बड़ी घटना बन जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सिर्फ एक चोला चेंज करती है, एक इंस्ट्रूमेंट जो उसने लिया इस जीवन में ये शरीर उसको चेंज करती है, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये ज्ञान उनकी मां को था, और इसलिए इस बड़ी सी घटना, इस बड़ी सी परिस्थिति में भी उस मां ने अपने मन की स्टेबिलिटी को खोया नहीं, नहीं तो इस माँ का क्या हाल हो जाता है ना। तो ये भी एक शक्ति है कि कैसे मैं बड़ी सी बड़ी परिस्थिति का कैसे सामना करूं। इससे बड़ी परिस्थिति तो कोई और नहीं हो सकती ना, कि निकट संबंधी की मृत्यु हो जाए, इससे बड़ी परिस्थिति हो सकती है किसी के भी लिए नहीं हो सकती। लेकिन उस समय मैं अपने आत्मिक स्थिति में टिक कर आत्मा को साकाश दूं, आत्मा को शांति के लिए दूसरी शांति पाठ करूं, और तीसरा आत्मा को एक नई जर्नी में जाने के लिए उसको शांति से विदा करूं। पॉसिबल है या नहीं है? रोना चिल्लाना उसकी याद करना, इट मींस कि उस छोटी सी आत्मा यानी बच्चे को हम पूरे जीवन अगर याद करते हैं तो वो पूरा जीवन उस नए परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकता। क्यों वो छोटा सा बच्चा रात रात भर चिल्लाता है, रोता है, सोता नहीं है, ना अपने माँ बाप को सोने देता है, ना खुद सोता है। आज छोटे से बच्चों में कई तरह की बीमारियां जन्मजात नजर आती हैं डॉक्टर्स को, क्यों? पिछले पास्ट कर्म, ये मेडिकल में जो भी चीजें हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ या उनके उनके बर्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम रह गई, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो स्कार्स, ये जो वूम्ब, ये जो घात है, ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड होता है जिसे वो आत्मा कभी भी मिटा नहीं सकती। लेकिन हम परिवार जो पीछे छूट जाता है, हमारा फर्ज है कि हम उस आत्मा को रोते रोते नहीं, शांति से विदा करें। इसलिए शांति पाठ बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उस आत्मा की खुशी और शांति चाहते हैं तो यही चाहते हैं ना कि वो आत्मा शांति शांति विदा हो जाए, खुश रहे अपने नए परिवार में, वहां एडजस्ट कर पाए, तो हमें उसके लिए शांति पाठ कराना तो बेहद जरूरी है। तो पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, पावर टू कॉपरेट, सहयोग शक्ति। आज आप देखिए, आज हम छोटी सी हेल्प किसी की कर देते हैं तो कितनी खुशी होती है, नहीं होती है ना? तो भगवान ने हमें यहाँ सिखाया कि एक शक्ति है कि दूसरों को सहयोग दो। आज कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मैं अकेले खुश हूं, अकेले रहना चाहता हूं, नो। फिर भी हमें कई व्यक्तियों की अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। हम पूरे दिन में कितने प्रकार की चीजों को यूज करते हैं, वो चीजें भी किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा ही बनाई गई हमारे पास आती हैं। तो हमें सहयोग एक दूसरे का जरूर करना चाहिए। जब हम सहयोग एक दूसरे का नहीं करते तो समय रहते कोई मुझे सहयोग देगा, हाँ या ना? कोई मुझे हेल्प करेगा, कोई मुझे कॉपरेट करेगा। जब आप किसी को कॉपरेट करते हैं तो दूसरे के हाथ भी कॉपरेशन वाले हमारी तरफ जरूर बढ़ते हैं। तो ये छठी शक्ति है, पावर टू कॉपरेट, पावर टू विड्रो। कछुए का एग्जाम्पल हमारे ब्रह्म कुमारी इसमें दिया जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कछुआ जंगल में या नदी किनारे जब आप देखते हैं और कछुआ देखता है कोई शिकारी आ रहा है शिकार करने, तो वो अपनी कोमल इंद्रियों को समेट लेता है और एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। शिकारी को पता भी नहीं चढ़ता और शायद वो उसके ऊपर बैठ के भी चला जाए तो भी नहीं पता चलेगा कि ये कछुआ है। लेकिन जैसे ही देखता है कि अब मैं फ्री हूं, मुझे कोई घात पहुंचाने वाला आसपास नहीं है, तो वो अपनी कोमल इंद्रियों को फिर से बाहर खोलता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। ऐसी पावर टू विड्रो। अगर आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो बात ये जो कर रहे हैं, ये जो घटना ये जो घट रही है, ये मेरे काम की नहीं है, तो आप वहां से विड्रो कर लीजिए। आज हम विड्रॉ करते नहीं हैं और तीसरा व्यक्ति जब दो लोगों के बीच में जाकर कुछ करता है तो तीसरा फंस जाता है और दो निकल जाते हैं, होता है नहीं होता? क्योंकि उस समय हमें पावर टू विड्रॉ करना नहीं आ रहा है। विड्रॉ किससे करना है? विड्रॉ उन चीजों से करना है जहां मेरा लेना देना नहीं है। कर सकते हैं? तो पावर टू विड्रॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। कहीं पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद नेगेटिव हैं, लेकिन मैं अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव बनाए रखे हुई हूं। अब मैं मुझ में विड्रॉ करने की शक्ति नहीं है, अब मैं उनके बीच जाकर बैठ गई तो क्या होगा? वो नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? यस। तो कई बार हम कहते हैं हम चाहते तो नहीं थे, हो गया। हम बोलना तो नहीं चाहते थे, बोल दिया। करना तो नहीं चाहते थे, कर लिया बिकॉज ऑफ दिस। पावर टू विड्रॉ करने की शक्ति नहीं है। तो हम विड्रॉ करें ऐसी सिचुएशन से, ऐसी लोगों से जो नेगेटिव हैं, ऐसी बातों से जो कि नेगेटिव हैं, ऐसे व्यक्तियों से जो मेरे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाने वाले नहीं है, ऐसी सिचुएशन से अपने को विड्रॉ करें। हो सकता है, नहीं हो सकता और लास्ट पावर है पावर टू पैकअप। आज आप पैकिंग कर रहे हैं ना अपनी, सभी जाएंगे शायद कल जाएंगे, तो पावर टू पैकअप, पैकअप करिए। किस चीज को पैकअप करना है? उस लगेज को, उस अटैची को, उस बैग बैगेज को पैकअप नहीं। पैकअप मींस, पावर टू पैकअप मीन्स अपने थॉट्स को पैकअप करिए। जो इधर उधर फैले रहते हैं ना हमारे विचार, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स हम आसपास के परिवेश के लिए क्रिएट करते हैं, व्यक्तियों के लिए क्रिएट करते हैं। उससे हमें पावर टू पैकअप, Being clear and ever ready for any new outcome. आज जब हम एक नई चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। अरे इस सिचुएशन के लिए तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। क्यों रेडी नहीं थी? क्योंकि मैंने पैकअप नहीं किया हुआ था। और अगर पैकअप किया हुआ है, कोई आता है, हाँ चले वहां पर, ठीक है चलिए, क्यों? क्योंकि पैकअप किया हुआ है सब कुछ, और पैकअप नहीं, हाँ एवर रेडी नहीं है। और अगर पैकअप नहीं किया तो एक मिनट थोड़ा सा आप वेट करेंगे, मैं पैकअप कर लूं, होता है ना। तो परमात्मा ने हमें यहां सिखाया, बी एवर रेडी, हमेशा तैयार रहो। किस सिचुएशन के लिए? हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। आजकल कोई भी सिचुएशन कहकर आती है, कोई बात कहकर आती है? नहीं, हर चीज के लिए तैयार रहो। आज एक फोन आया, आज आप यहां बहुत खुश हैं, एक फोन आया, वो आपकी मेंटल स्टेट को डाउन में पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। एक फोन कॉल ही हो सकता है। तो बी एवर रेडी, हर सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है। सीइंग ईच सेकेंड एज ए लर्निंग, पुटिंग अ फुल स्टॉप बाय वाइंडिंग अप द नेगेटिव पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, पास्ट को फुल स्टॉप लगाइए, पास्ट को हमेशा फुल स्टॉप लगाना ही है। जब हम पास्ट को, अतीत को फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो अतीत की कुछ बातें प्रेजेंट में भी दुखी कर देती हैं, प्रेजेंट में भी रुला सकती हैं अतीत की बातें। इतना हम उन अतीत की बातों में इंडल्ज हो जाते हैं कि आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो बात तो पास्ट में हुई थी। किसी ने बहुत सुंदर कहा, अतीत है सपना, अतीत है सपना, भविष्य है कल्पना। ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, भविष्य है कल्पना, लेकिन प्रेजेंट है अपना। इसलिए इसी का वर्तमान का नाम ही क्या है, प्रेजेंट। एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। प्रेजेंट को तो जी लीजिए अच्छे से, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम अतीत और भविष्य में झूलते रहते हैं, और प्रेजेंट कब निकलता रहता है, सालों साल कब निकलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता। तो ये सारी जो अष्ट शक्तियां हैं, ये शक्तियां हमें बताती हैं कि इन शक्तियों का हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है? जरूरी है। और ये अष्ट शक्तियां ही दुर्गा माँ के आठ हाथों में दिखाई गई हैं। माँ दुर्गा को जब हम एक पिक्चर में देखते हैं तो उनके आठ हाथ नजर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत डीप बात बता रही हूं। दुर्गा माँ के चित्र में जब आठ शक्ति, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, शायद कब से हैं, सॉरी 3rd अक्टूबर, ओके। दुर्गा माँ के चित्र में जब आठ हाथ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि दुर्गा माँ के हाथ में तलवार, दुर्गा माँ के हाथ में त्रिशूल, दुर्गा माँ के हाथ में गदा, ये क्या? माँ के हाथ में ऐसे अस्त्र शस्त्र तो बिल्कुल शोभा नहीं देते। आप सोचिए, आपकी माँ के हाथ में, एक हाथ में चिमटा और एक हाथ में बेलन हो तो, बच्चों सुन रहे हो, माँ के हाथ में चिमटा और बेलन हो तो भाई बात बाद में करेंगे, इसको थोड़ा साइड में रख दो। ये बेलन रोटी बेलने के लिए ही अच्छा लगता है। माँ को तो हमने कहा ममता मई माँ, देवी माँ जो मेरी पालना करती है, और ऐसी दुर्गा माँ जो पूरे जगत की माँ है, ममता मई माँ, दिव्य शिव शक्ति माँ, ऐसी माँ को हमने तलवार त्रिशूल और गदा के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन आध्यात्मिकता में बहुत सुंदर ये राज हमें समझ में आया कि आठ हाथ अष्ट शक्तियों के प्रतीक हैं। जब ये अष्ट शक्तियां हम सभी के हाथ में आ जाती है, हम सभी के मन और बुद्धि में आ जाती हैं, तो हम एक एक दुर्गा हैं। इस पे भी ताली नहीं बजाते आपको? हर आत्मा परमात्मा की ही शक्ति है, हर आत्मा उस शिव की ही शक्ति है, लेकिन अगर उसमें सामना करने की, सहन करने की, निर्णय करने की, सहयोग करने की बाकी अन्य शक्तियां, तो ये आठ शक्तियां, आठ बाहुबल का प्रतीक नहीं है, आठ शक्तियां मन की शक्तियां हैं। और जब ये मन की शक्तियां हमें महसूस होती हैं, तो उस शिव से हमें अष्ट शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो राजयोग की विधि से हम इन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में महसूस करें, तो आप पाएंगे, आप में से कई बोलेंगे, पहले ना मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकता था, आज मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। पहले मैं किसी की सुन नहीं सकती थी बिल्कुल भी, आज मैं सुन लेती हूँ। पहले मुझे कोई कहता था हेल्प करो तो मैं कभी कॉपरेट नहीं करता था, आज मैं कॉपरेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मन जब परमात्मा से जुड़ता है तो ये अष्ट शक्तियां परसेंटेज में हमारे भीतर ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। क्योंकि हमारे ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर जब बहनें, माताएं, भाई आते हैं, तो कई बार बच्चे भी आकर कहते हैं कि आप मेरी मम्मा को ना यहीं बुलाया करो। तो हम कहते हैं क्यों बुलाया करो, अब ना वो मुझे मारती नहीं है पढ़ाई के पीछे, अब वो मुझे प्यार से समझाती है। तो आप सोचिए कि कितनी चेंजेस हमारे भीतर आती हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, ये चेंजेस पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? पॉजिटिव हैं। इन्हीं चीजों को तो हम भूल गए थे जो हमारा जीवन बिखर गया था। आज संबंधों में मधुरता क्यों नहीं है, आज स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों अनुभव हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट। ये पावर्स का अनुभव कर ही नहीं रहे, कहां एडजस्ट करना है, कहां समाना है, कहां पर सहयोग देना है, कुछ पता ही नहीं। जिसको सामना करना होता है वहां हम सामना नहीं करते, वहां हम बहुत सुना देते हैं, और जहां समाना होता है वहां हम समाते नहीं हैं। आज हमें यही नहीं पता सामना किसका करना है और समाना किसको है। आज हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बॉस का हमें सामना नहीं करना, समाना है। और अपनों को जो हमारे निकट संबंधी हैं, उनका भी सामना नहीं करना, संभालो। व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा है माला की तरह, माला के दाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और माला के दाने अगर दूर दूर होंगे कितने बुरे लगेंगे, कहेंगे माला में मोती कम है, तभी तो माला दूर दूर मोतियों से बनाई है। लेकिन माला के दाने जितने नजदीक उतने हमारे संबंध मधुर। और माला का एक दाना आप निकाल दीजिए, झरझर झरझर करके सारे मोती बिखर जाएंगे और माला तो पता ही नहीं कहां गई। इसलिए संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी ये शक्तियां बहुत जरूरी हैं। जीवन में सक्सेस अनुभव करने के लिए भी ये शक्तियां बहुत जरूरी हैं। व्यवहारिक जीवन में कैसे एक दूसरे से चलना है, ये शक्तियां बहुत जरूरी हैं। अपने बॉस को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी ये शक्तियां बहुत जरूरी हैं। तो हर पहलू में इन शक्तियों को हम अनुभव करें। तो चलिए, लास्ट में 3 मिनट मेडिटेशन करके हम इस सत्र को यहीं पर पूरा करते हैं। फैन ऑफ कर दीजिए भाई साहब, आराम से सभी बैठे। मेडिटेशन का ये शायद आपका लास्ट सत्र है, तो इसलिए आराम से बहुत एकाग्रता से अपने ही साथ बैठे। ओम शांति। चारों ओर से मन के विचारों को समेट ले, माथे के बीच, उस सुंदर सितारे को महसूस करें। हड्डी मांस के शरीर को मैं आत्मा सितारा चला रही, मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियां हैं। कहां सहन करना है, कहां समाना है, ये शक्तियां कुछ आत्मा में निहित है। भंडार है मेरे पिता, मैं उनकी संतान शिव शक्ति हूं। Om